आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है 5 राज्यों के चुनाव परिणाम और इसके राजनीतिक मायने पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी और शेखर अय्यर। परिचर्चा का संचालन पत्रकार संतोष पाठक कर रहे हैं।
शेखर जी, ये 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे आए हैं, अगर हमें इसको देखना पड़े लहर के रूप में, जब भी चुनावी नतीजे आते तो कहते हैं इसकी लहर उसकी लहर, इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से क्या लगता है किसकी लहर थी आखिर?
वैसे देखा जाए जैसे चुनावी लहर की बात होती है, कोई लहर की ये नहीं है, लेकिन एक प्रकार की चेंज या बदलाव की एक करंट अगर देख सकते हैं तो लगता है कि बदलाव की बात। हर 3 राज्यों में, खास करके छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो मध्य प्रदेश में, वो चेंज की ये और साथ साथ जो एंटी इनकमेंसी कहा जाता है, जहां पे सरकार 15 साल से रहा हो, जहां के विधायक और मंत्री भी काफी समय से रहे हों, क्योंकि जहां 15 साल से एक सरकार है हो सकता है कि मंत्री भी 10 साल से होंगे या विधायक भी उतने लंबे ये होंगे, कहीं ना कहीं एक चेंज की कहिए कि वोटर का फिटीग हो या कुछ ऐसी, मुझे लगता है कि ज्यादा फैक्टर है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 3 राज्यों में जिस तरह हुआ है। लेकिन इसलिए वेव नहीं कह सकते कि जिस तरह, खास करके मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में जिस तरह बीजेपी का भी इतना क्लोज आया है, क्योंकि गैप जो है रूलिंग पार्टी और इनका वो भी बहुत कम है, कई जगह में जिस मार्जिन में जीते गए हैं या हारे गए हैं अगर वो मार्जिन देखेंगे वो भी बहुत कम है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं लोग चेंज भी चाहते थे, साथ साथ कुछ लोगों को लगा कि जो चीजें हुए हैं जो उसमें भी कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए, तो एक प्रकार से एक मिक्स्ड है, लेकिन कुल मिला के देख जाए वो एक चेंज के फेवर में गया है।
सुब्रतो साहब, मध्य प्रदेश जो हम देख रहे हैं चुनावी नतीजे, आंकड़े अगर देखते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी को ज्यादा है, कुल वोटों की बात करें तो बीजेपी को ज्यादा है, लेकिन बीजेपी सत्ता से बाहर है।
यही चित्र 2013 में छत्तीसगढ़ में आई थी, कांग्रेस की वोट परसेंटेज ज्यादा था, बीजेपी का थोड़ा कम था, फिर बीजेपी ने सरकार बनाई। ये लोकतंत्र हमारे जो इलेक्टोरल सिस्टम है, फास्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में, ये होता ही रहता है, इसमें कोई अचंभा की बात नहीं है। अचंभा की बात किसमें है? जो बदलाव का भावना था, मैं कहूंगा सबसे महत्वपूर्ण जो टेस्ट केस बोलते हैं मध्य प्रदेश था, क्योंकि 2013 और आज के 2018 में जो फर्क है, 10% की वोटिंग एक तरफ से दूसरा तरफ गया हुआ है, वो लोकतंत्र में ज्यादातर नहीं होता है। तो इसको लेके मुझे लगता है सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उसके तो विश्लेषण करेंगे, उसके साथ ये सोचेंगे जो इतना बदलाव कैसे आया। जैसे लास्के का एक सेंटेंस है, रेवोल्यूशन बाय कंसेंट, हम मध्य प्रदेश को कह सकते हैं। बाकी जगह आप देखेंगे तेलंगाना में जो जल्दी चुनाव उन्होंने किया भंग करके लेजिस्लेटिव असेंबली, और उन्होंने प्रत्याशा जो उनकी था वो पूरा हुआ, वो दोबारा चुन के आ गए। उसके साथ जो कांग्रेस और नायडू का जो गठबंधन था उसको भी एक धक्का मिला। मिजोरम में हम देखते हैं जो बदलाव हुआ है, 4 जगह बदलाव हुआ है, 1 जगह नहीं हुआ है, और इस बदलाव में जो सारे इंडिकेटर्स मिलता है उसको लेके मुझे लगता है काफी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। और लोकसभा चुनाव आने वाला है, करीबन 6 महीना के अंदर ही चुनाव होने वाला है। मुझे लगता है इसको सारे तरह हम विश्लेषण करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं जो सेमीफाइनल बड़ा अच्छा सेमीफाइनल रहा।
अय्यर जी, मध्य प्रदेश पे एक बार हम फिर से आएंगे। आपने कहा बदलाव की बयार, कल जब काउंटिंग हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि 2020 मैच हो रहा है, हर बॉल के बाद लगता है इधर के पाले में उधर के पाले में। फाइनल जो नतीजे आए कमोबेश वैसा ही रहा। इस बदलाव की बयार के बीच भी शिवराज सिंह चौहान बहुत कुछ बचा पाने में तो कामयाब रहे, आगे के लिए क्या मध्य प्रदेश में?
देखिए, उसमें 2 बातें की जा रही है, मतलब एनालाइज करके जो कहा जा रहा है कि एक, शिवराज का खुद का जो स्टेचर, खुद का जो कंट्रीब्यूशन पिछले 13 साल से जो मुख्यमंत्री रहे, उनके ट्रैक रिकॉर्ड लगातार जिस तरह की वहां पे गवर्नेंस पे उनकी जो रिकॉर्ड रही है उसका अपना एक रहा। दूसरी बात जो है कि एमएलए को लेकर, जो जहां जहां स्थानीय जो प्रतिनिधि है वहां को लेकर लोगों के अंदर में एक ये था कि कोई चेंज होनी चाहिए। कुछ एमएलए को तो ड्रॉप किया गया, 25% के आसपास कुछ ड्रॉप किया गया, लेकिन जिस परिमाण में उनको चेंज करना था उतना नहीं किए। उसका भी एक कारण है कि शिवराज जी भी थोड़ा सॉफ्ट पर्सनालिटी है, नहीं चाहते थे कोई ड्रास्टिक हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस वक्त अगर ड्रास्टिक होता तो हो सकता है कि इतना क्लोज रेंज में चीजें ना होते, क्योंकि मंत्रियों के खिलाफ तो था ही, क्योंकि कई मंत्री चुनाव हारे हैं। लास्ट में देखकर अगर आप जैसे देखेंगे कई चीजें जो मैं मानता हूं कि बड़ा गेम चेंजर रहा वो है किसान समस्या को लेकर। किसान समस्या को लेकर जिस तरह कांग्रेस ने एक वादा किया कि कर्जा माफ वाला, ये कर्जा माफ अपने आप में ये एक वोटर के माइंड में एक बड़ा आकर्षक चीज बन गया था। 2017 में फार्मर्स की बड़ी एजिटेशन हुई मंदसौर में, उस एजिटेशन के बाद ही वहां पर किसानों का ठीक मूल्य से उनको मिले, ठीक जगह पहुंच पाए, इसको लेकर काफी ये चला। लेकिन बड़ी दिलचस्पी बात है, मंदसौर में बीजेपी ने जीती है, वहां जितने सीट हैं वहां उस इलाके में सारी जीते हैं। कहीं ना कहीं एक ये हुआ कि क्या है कि आप परफॉर्म करते जाइए, लेकिन अगर कोई नया आदमी कह रहा है कि इससे ज्यादा मैं और कुछ दे रहा हूं, एक ऑटोमेटिक वोटर के माइंड में होता है ठीक है हमने तो इनको 13-15 साल देख लिया है, वाई नॉट ट्राई समथिंग न्यू, ये वोटर में अपने आप होता है। और साथ साथ अगर वो इंडिविजुअल एमएलए या मंत्रियों का एंटी कंगमेंसी भी उसमें जुड़ जाता है, क्योंकि सवाल क्या है कि जब वोटर वोट डालने जाता है यही सोचता है कि पिछले 5 साल में कैसा क्या हुआ, अपने क्या क्या चीजें थी वो कैसी हुई, उसकी क्या दूरी कही, क्या कमी थी, स्थानीय जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो एमएलए हैं वो कैसे हमारे मेरे साथ रिस्पॉन्ड किए। देखिए ये पार्टी लेवल बाद में आएगा, लेकिन बात ये है। दूसरी चीज भी कहा जा रही है कि एक प्रकार से जो इकोनॉमिक का जो सिचुएशन है वो भी असर करता है, कई मांदा है, कई ट्रेड पिकअप नहीं हुआ, फिर इकोनॉमी रिवाइव नहीं हुआ, कई जगह कह रहे हैं नहीं डिमोनेटाइजेशन के बाद हमारे लिए कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ी, फिर वही मांदा चल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स उसमें अगर एंटी इनकम्बेंसी भी जुड़ जाए तो आपको परिणाम ऐसे ही मिलता है।
प्रोफेसर साहब, हंग असेंबली ये हमने देखा पिछले 20-25 साल पहले तक कि किस तरह से देश के बड़े राज्यों में हंग असेंबली आती रही, लेकिन मध्य प्रदेश वो राज्य था जहां कांग्रेस बीजेपी में सीधा मुकाबला रहा, उससे पहले कांग्रेस और जनसंघ में सीधा मुकाबला रहा, पूर्ण बहुमत की सरकार मिलती रही। मध्य प्रदेश में हंग असेंबली, एक ऐसी सरकार जिससे बहुत ही छीन बहुमत है वो भी सपा बसपा और निर्दलीयों के भरोसे, ये मध्य प्रदेश जैसे राज्य के लिए ये अपने आप में थोड़ा सा अजीब नहीं है कि जो हमेशा पूर्ण बहुमत की सरकार चुनता रहा वो इस एरा में आके हंग असेंबली चुन ली उसने?
इधर तो जो असंभव था वो संभव हो गया, 10% वोट एक तरह से दूसरे तरफ आया, का मतलब है जिसे जैसे टेनिस में बोलते हैं एक एडवांटेज, वो तो रूलिंग पार्टी का था। तो इसलिए पुराने जो मॉडल्स आप जिक्र कर रहे हो वो अभी एक एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखिए दिग्विजय सिंह से एग्जिट के बाद उधर कांग्रेस तो मैप में रहा ही नहीं, कांग्रेस से एक रिवाइवल हो गया। तो इसलिए हमें ये एक नई दृष्टिकोण से देखना होगा, जैसे हर जगह राजनीति परिवर्तन हो रही है जैसे बंगाल में हुआ, तो इसी तरह मध्य प्रदेश में राजनीति बदल रही है। और इसलिए आप देखेंगे जैसे 15 साल एक बहुत लंबा समय होता है लोकतांत्रिक राजनीति में, और उसके अनुसार आप पहले के भी दृष्टिकोण से देखेंगे, जब बीजेपी सरकार बनी और दिग्विजय सिंह हार गए तब भी लोग बोलते थे कि दिग्विजय सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, उन्होंने काम बहुत अच्छा किया था, फिर भी वो हार गए। तो मुझे लगता है स्थिति अभी भी वही है, लोगों ने देखा जो इनका काम भी ठीक ठाक है वो भी जैसे दिग्विजय सिंह का था, पर जैसे एक तो वोटर फिटिंग होता है, दूसरा तरफ देखिए किसानों को जो अब जो सारे सवाल आगे आ रहा है इसको लेकर दोनों मुख्य राजनीतिक दल को बहुत अच्छी तरह चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जो हम बात करते हैं ये किसान को कहीं भी नहीं मिल रही है, महाराष्ट्र जैसा विकसित जो राज्य है उधर भी फार्मर सुइसाइड हो रही है, मध्य प्रदेश में भी हो रही है। तो हमारी जो पूरा राजनीति वो आहिस्ता आहिस्ता जैसा आपका नगर की तरफ जा रहा था, मुझे लगता है एक बैलेंसिंग एक्ट इस चुनाव में हमने देखने मिला, क्योंकि रूरल इश्यूज को लेके आपको बहुत अच्छी तरह सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा हिंदुस्तान अभी भी गांव भित्तिक देश है, और इसमें जब तक आपके गांव की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको राजनीतिक स्टेबिलिटी मुश्किल होगा पाना।
मतलब इस बार के चुनाव में एक चीज देखने को मिली कि किसान और खेती किसानी ये भी चुनाव का केंद्र बिंदु बनता हुआ नजर आया। अय्यर साहब, छत्तीसगढ़ चावल वाले बाबा के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे, जिस तरह की योजनाएं वो चला रहे थे चावल को लेकर, गरीबों को लेकर, आदिवासियों को लेकर, वहां सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान थोड़ी बहुत जमीन बचा पाने में कामयाब रहे, छत्तीसगढ़ बिल्कुल ही एक तरफा नतीजा गया। कांग्रेस ने जो वादा किया है कि एमएसपी दुगना करेंगे, कर्ज माफी का अपना वादा, तो लगता है कि किसानों ने इधर की बजाय कांग्रेस के वादों पर ज्यादा भरोसा किया।
बिल्कुल, देखिए दूसरा चीज छत्तीसगढ़ में जो आश्चर्यजनक रिजल्ट कहूंगा, क्योंकि इतना बुरा हाल पे बीजेपी पहुंचेगा ये किसी का अंदाज भी नहीं था, कांग्रेस भी इतने एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। कांग्रेस को लग रहा था कि एंटी इनकमेंसी काफी है, हो सकता है हमारे लिए एक फेयर चांस है, लेकिन जिस तरह ये घटा इसमें एक थर्ड फैक्टर जो बड़ी दिलचस्पी पॉइंट है कि वो है अजीत जोगी फैक्टर। अजीत जोगी 2016-17 में पार्टी कांग्रेस से छोड़कर अलग बनाए। अजीत जोगी का जब अलग बनने के जो फैसला हुआ तब कह रहे थे ये कांग्रेस को ज्यादा इफेक्ट होगा क्योंकि वो खुद कांग्रेसी है। कुछ सालों से जब से उनके बेटे का पार्टी से निकाला गया तब से वो केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ थे। ये जब अलग पार्टी बने और मायावती के साथ एक अंडरस्टैंडिंग करके एक नया फ्रंट वहां खोला गया, थर्ड फ्रंट, तब लगा कि ये कांग्रेस को नुकसान करेगा। लेकिन ये हमें क्रेडिट देनी चाहिए रमन सिंह जी को। रमन सिंह पहले से कह रहे थे ये केवल कांग्रेस को नहीं काटेगा, ये हमें भी नुकसान करेगा। तो फाइनली क्या हुआ है कि अजीत जोगी का पार्टी ज्यादा नुकसान बीजेपी को, काफी बीजेपी के इलाके में जो बीजेपी स्ट्रांग होल्ड मतलब वहां इनके लोग हारे हैं और कांग्रेस को उतना नुकसान नहीं किया। कांग्रेस बिना कोई बड़ा चेहरा, बिना कोई बड़ा नेतृत्व, अपने जो कैडर का स्ट्रेंथ है उसमें जीते।
हुआ कैसे ये मायावती दलित वोट बैंक, कांग्रेस से निकले हुए अजीत जोगी, नुकसान वो बीजेपी को पहुंचा दिया उन्होंने?
इसका मतलब है ए, कांग्रेस का जो अपील रहा वो अजीत जोगी फैक्टर से कम नहीं हुआ और अजीत जोगी को जाने दिया और अजीत जोगी से नाता तोड़ा। ये खास करके राहुल गांधी जी का फैसला है, ये फैसला सही हुआ। दूसरी तरफ जो एंटी यूएमएस की बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में और भी सीरियस था। खास करके रमन सिंह का अपना स्टेचर था, चावल बाबा काफी काम किए वो सब ठीक है, लेकिन वो चावल बाबा का इमेज इस बार मैं जी काम नहीं किया। इसलिए काम नहीं किया उनके मंत्रिमंडल के सदस्य उनके बारे में जो छवि उसका जो इम्पैक्ट, और सब लोगों को फिर टिकट दिया गया। एमएलएस भी वैसे कई एमएलएस के खिलाफ इतना फीडबैक अच्छा नहीं था। केंद्रीय बीजेपी लीडरशिप ने भी इंटरफेयर नहीं किया कि ठीक है रमन सिंह सोच रहे हैं तो यही सही है तो ठीक है। लेकिन जहां रिपीट नहीं हुआ, जहां ये एंटी इनकम को स्टॉक में नहीं है, तो नुकसान बहुत हुआ है, बहुत मंत्री वहां पे चुनाव हारे हैं। ये दो चीजें, एक जो एंटी इनकम के मंत्री के खिलाफ, कई मंत्री के खिलाफ तो कुछ एलिगेशन भी थे, भ्रष्टाचार के बारे में भी काफी इलेक्शन डिबेट में भी चल रहा था, तो ये सब कुल मिला के बहुत डैमेज बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में हुआ।
लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर ये चुनावी जीत हार से अलग देखें प्रोफेसर साहब, नक्सल कोर एरिया जो कहा जाता है वहां वोट ज्यादा हुआ, मतलब नक्सलियों की धमकी को वहां के गांव वालों ने, आदिवासियों ने नकार दिया, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात रही वहां पर?
देखिए ये सीएसडीएस के जितने भी सर्वे आज तक आया है उसमें यही देखा गया है कि गरीब लोग ज्यादा वोट देते हैं क्योंकि उनकी लोकतंत्र में जो स्टेक है वो ज्यादा है। आप और हम जैसे नगरवासियां सोशल कांटेक्ट में निकल जाते हैं, पर जो साधारण नागरिक है उसके लिए एक ही सड़क है, वो लोकतंत्र है। इसलिए वो हर जगह आप देखेंगे ज्यादा वोट देते हैं। हम लोग सर क्रिकेट मैच देखते हुए वोट ना दे। देखिए छत्तीसगढ़ की जो स्थिति थी वो बीजेपी के लिए बहुत गंभीर थी। 2011 में बंगाल में जब ममता आई तब एक स्लोगन आया था, चलो पलटाई, जो हम इसको बदल देंगे। मैं जितना फॉलो किया छत्तीसगढ़ का चुनाव का पूरा प्रोसेस, उसमें मुझे वही अंडरकरेंट पहले से लगा, हमको बदलना है, ये सरकार नहीं चलेगी। ये सरकार क्यों नहीं चलेगी? चावल बाबा कहना है, कुछ भी आप कहना है, जो ट्राइबल स्टेट है, प्राइमरीली ज्यादा ट्राइबल्स हैं, विकास का जो मुद्दा है वो कुछ खास आगे नहीं बढ़ा। हम लोग जो मॉडल बदल रहे हैं, एक जो कैपिटलिस्टिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का सोच रहे हैं जिसमें प्राइवेट पार्टनरशिप ज्यादा हो रहा है, शायद ये ज्यादा कामयाब छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में नहीं होगा। विकास के बारे में दूसरे ढंग से सोचना होगा क्योंकि हमारे जो ट्राइबल एरियाज में है उधर आपका जो संपत्ति है वो बहुत ज्यादा है, पर आप इसको इस तरह विकास करें कि उधर के जो लोग हैं उनका विकास ना हो, तो ये करीबन तय है वो लोग बदलाव चाहेंगे। और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा यही हुआ है, जितना भी विकास हुआ है उसमें जो निजी लोग थे जो ट्राइबल एरियाज में थे उनकी भागीदारी बहुत कम हुआ, इसीलिए पूरा ये बन गया हमें बदलना है और चलो पलटाई आ गया। जैसे ममता आई ऐसे ही आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ गया।
शेखर जी, राजस्थान पे अगर हम चर्चा करें, 39.3% वोट कांग्रेस, 99 सीट, 38.8% वोट बीजेपी, 73 सीट। शुरुआत जब 2-3 महीने पहले हम बात करते थे तो कहा जा रहा था कि राजस्थान में बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, 25 सीट आएगी, 30 सीट आएगी, 73 पे पहुंच गए, कांग्रेस को 99 पे रोक दिया, यानी पूर्ण बहुमत नहीं आने दिया, इसको कैसे देखेंगे?
राजस्थान की रिजल्ट भी 1 महीना पहले या 2 महीना पहले तो ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे के खिलाफ माहौल ऐसा है कि 25-30 से ज्यादा बीजेपी को नहीं मिली, लेकिन जिस तरह वहां पे बीजेपी ने लास्ट फेज में पूरा ताकत लगा के वहां पे जो काम किए, खास करके अमित शाह जी ने वही कैंप करके जो वसुंधरा राजे के खिलाफ जो पार्टी में जो माहौल था, पार्टी के लीडर जो उनके खिलाफ थे, उनकी स्टाइल परफॉर्मेंस कहा जाता था बड़े एरोगेंट है, एक्सेसिबल नहीं है, वो सारे चीजों को दूर करने की कोशिश किए और लगातार कैंपेन में वो फिगर ये हुई। इसीलिए आज वो स्थिति, क्योंकि कांग्रेस के लिए सबसे बेस्ट स्टेट माना जाता था राजस्थान अगर वैसे देखा जाए, क्योंकि वसुंधरा राजे ने जब 2013 में चुनाव जीती थी 163 सीट ली थी 200 सीटों से, मतलब कुल सीटों से। वैसी अगर कांग्रेस का भी एक्सपेक्टेशन था कि बड़ी लहर होगी और बड़ी चेंज होगी, लेकिन वो नहीं हुआ। इसका कारण कांग्रेस में भी कुछ कमी थी। एक तो कहा जा रहा है कि जिस तरह टिकटें बांट किए गए तो उसमें कई और कांग्रेस के बड़े नेता भी स्वीकार कर रहे थे प्राइवेटली कि 25-30 सीट पे हमने गड़बड़ हुआ है। और दूसरा चीज नेतृत्व को लेकर, एक पुराने वेटरन है अशोक गहलोत जी और दूसरी तरफ नया चेहरा सचिन पायलट। सचिन पायलट पहले से लगे हुए थे और अशोक गहलोत का काम ऑल इंडिया लेवल पे था, लेकिन लास्ट में यह तय हुआ कि अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सचिन पायलट का तब तय नहीं हुआ। फिर दो दिन के बाद घोषणा हुई सचिन पायलट भी लड़ेंगे। उसका कहीं ना कहीं एनर्जी में, जब आपके माहौल भी अच्छा हो, आपके फेवर में हो, कुछ लोग जो नए पीढ़ी है वो सचिन पायलट से लगे हुए, जो पुराने जो कांग्रेस के जो शक्ति है वो आपके वेटरन के साथ है, तो कई उसका भी कुछ भी फैक्टर किया होगा, जिसकी वजह से बदलाव का मूड था। हो सकता है आप उसको वेव में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसी जगह पे पहुंचे। और दूसरी साइड में वो भी बड़ी कोशिश की हमारी हार हो लेकिन इतना ह्यूमिलेटिंग ना हो, ताकि हमारी सर ज्यादा हमें झुकाना पड़े। तो वो ऐसे ही करके आपको कॉम्बिनेशन है। और क्योंकि राजस्थान दूसरी फैक्टर जो है वहां पे बड़े कास्ट का भी कंसिडरेशन है कि कौन माली है, कौन गुजर है, कौन जाट है, क्योंकि ये कास्ट फैक्टर हर बार काम किया है वहां पे, तो वो कास्ट फैक्टर का भी इसमें इन्फ्लुएंस है, जिसके वजह से हम देख रहे। जैसे वसुंधरा के लिए कांग्रेस को कैंडिडेट वहां से ले आए, आपके जसवंत सिंह के बेटे मानेंद्र आके लड़े, वो भी 700 किलोमीटर बाड़मेर से आके यहां पे वसुंधरा जी के जो होम कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये बड़ा क्लियर है कि माहौल आपके फेवर में भी हो, लेकिन आपको अगर बड़ी वेव चाहिए, आपको संगठन में जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी जो, क्योंकि टिकट को लेकर, अच्छा दूसरी चीज है कई रिबेल्स कैंडिडेट भी थे जो इंडिपेंडेंट के रूप में खड़े हुए थे, जो फैक्टर हमने मध्य प्रदेश में भी काफी देखा, लेकिन राजस्थान में उसका अपना असर है, क्योंकि जहां जिनको टिकट नहीं दिया गया वो अगर अपने इलाके में प्रभावशाली नेता हैं तो वो चुनाव लड़ेंगे ही, तो उनके समर्थक भी कहेंगे आप लड़ लीजिए।
ये यहां पे कहा गया कि मुख्यमंत्री पद के दो दावेदार, दोनों को आपने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आपने लड़ा दिया कि दोनों विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये जो 99 का आंकड़ा है वो दोनों की आपसी की लड़ाई की वजह से है कि 100 पार नहीं कर पाए वो लोग,
ये कह सकते हैं, क्योंकि आपसी लड़ाई भी, वो लड़ाई आपसी में ऐसी खुल के नहीं था, मैं कहूंगा ज्यादातर उन समर्थकों के बीच में, और वो समर्थक भी वो पीढ़ी की भी, एक थोड़ा ओल्डर जनरेशन, एक फ्रेश जनरेशन। और राहुल गांधी अपने आप में एक यंग लीडर है, तो वो भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस में और यंग एनर्जी हो, काफी यंग फेसेस का भी इसमें टिकट देने की बात हुई। और जिनको टिकट नहीं मिलता है तो वो अपने आप से वो बड़े नाखुश होते हैं, और जिसको टिकट मिला उसके खिलाफ काम करते हैं। सीटों में अगर 100 पार नहीं कर पाए, क्योंकि 200 से 100 पार नहीं कर पाए, आज डिपेंडेंट है बीएसपी और कई इंडिपेंडेंट, ये उसका बड़ा कारण यही हो सकता है।
प्रोफेसर साहब, राजस्थान का एक इतिहास रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखें, 25 में से 25 सीट, अब कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ये जो नतीजे हैं वो वहां रिफ्लेक्ट करेगा क्या राजस्थान?
राजस्थान का हम जो स्थिति देख रहे हैं, जो वोट परसेंटेज करीबन एक ही रहा, कांग्रेस को जितना अच्छा करना चाहिए था ये नहीं किया, और बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी जो एक्सपेक्टेड था उससे अच्छा हुआ है। जो कारण लगता है, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन राजस्थान में है वो दूसरे प्रदेश से अलग है। मायावती कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेती तो कांग्रेस का सक्सेस उतना ही होता जितना वसुंधरा का हुआ था। इसका मतलब है 3-4% वोट जो मायावती को मिली है वो सॉलिड सपोर्ट मायावती का है। अब आपने लोकसभा का जिक्र किया है, मुझे लगता है अब तो ये करीबन तय है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका कहीं भी हो, जो एनडीए और यूपीए का जो कोलिशन पहले जैसे था उस तरह का बनेगा और भी पोलराइज हो जाएगा। कांग्रेस एकोमोडेटिव पॉलिटिक्स करे, मायावती को एक साथ चले और मायावती भी मान जाए, फिर वही नतीजा रिपीट होगा जो 2014 में हुआ। 2014 में एडवांटेज बीजेपी का था, अब 2019 में वही एडवांटेज को कांग्रेस के पास जाने की उम्मीद है।
प्रोफेसर साहब, आपने इससे पहले तेलंगाना का जिक्र किया, टीआरएस 46.9 तकरीबन 47% वोट, कांग्रेस जो नंबर टू रही 28.4% वोट, तो इन पांचों राज्यों में ये शायद वो राज्य होगा जहां वोटों का डिफरेंस बहुत ज्यादा है फर्स्ट और सेकंड में। सही फैसला रहा मतलब केसीआर का कि विधानसभा समय से पहले भंग करवा दी जाए, चुनाव करवा दिया जाए, क्योंकि पहले से भी ज्यादा सीटें मिली उनको?
केसीआर का तो करीबन तय है, उनका जो पूरा डिसीजन था पहले चुनाव करने का उसमें वो जीत ही गए। उसमें देखिए दो तीन कारण है, जो कांग्रेस का उम्मीदें किसके ऊपर खड़ी हुई थी और नायडू जी का भी क्या था। आपको याद होगा जब तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था, नायडू और अभी जो टीआरएस है दोनों अलग प्लेटफॉर्म में थे। एक चाहते थे आंध्रा टूटे ना टूटे, दूसरा चाहते थे तेलंगाना बन जाए। तो कांग्रेस का उम्मीद यही था कि हम लोगों ने तेलंगाना राज्य बना दी तो उसमें नायडू का जैसे पॉलिसीज था यूनाइटेड तेलंगाना, उसका शायद कुछ कम हो जाए इफेक्ट। पर मुझे नहीं लगता कांग्रेस सीरियसली सोचा था इस बार स्वयं क्षमता में आ सकते हैं। और नायडू के लिए भी मुझे लगता है ये एक टेस्ट केस था, क्योंकि उनकी जो गढ़ आंध्रा में है वो ठीक ठाक बना हुआ है, वो जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मैं कितना बढ़ा सकता हूं। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जो लोकतंत्र की जान होती है वो तो 5 साल बाद ही पता चलेगा। जो आंध्रा स्टेट बना है कम से कम आप कुछ समय तो दीजिए उसको आगे बढ़ने का। उसके साथ काफी चीजें बोला जा रहा है, जो सोशल वेलफेयर मेजर्स था ये था, पर उनके एक परिवार का जो बातें चल रही थी और उनके बारे में भी रिसोर्स ठीक ठाक ना यूज करने का भी था। मुझे लगता है जो वोटर होता है वो टाइम देता है। ये तो चुनाव वो जीत ही गए, जीतना ही था, अगला चुनाव कितना जीतेंगे उसके ऊपर अब सवाल 5 साल बाद उठाइए।
अजय साहब, हम लोकसभा चुनाव के नजरिए से भी अगर देखें तेलंगाना को, एक महागठबंधन देश राष्ट्रीय स्तर पर, नायडू लीड ले रहे हैं, नायडू लगातार चंद्रबाबू नायडू मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन यहां पे गठबंधन हारा तेलंगाना में। केसीआर की क्या भूमिका होगी कि महागठबंधन में तो चंद्रबाबू नायडू पहले मौजूद है और चंद्रबाबू नायडू और केसीआर के जो आपसी रिश्ते इतने ज्यादा खराब है, तो 2019 के परिप्रेक्ष्य में क्या करेंगे केसीआर?
पहली चीज तो समझना चाहिए, चंद्रबाबू नायडू का जो रोल शुरू किए थे महागठबंधन का एक नया मुखिया के रूप में, जो चीज पहले सीताराम येचुरी कर रहे थे, ये तेलंगाना के जो कांग्रेस की हार के बाद, ये मुझे नहीं लगता चंद्रबाबू नायडू का ज्यादा भूमिका कांग्रेस नहीं देना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना में सीधा मुकाबला था कांग्रेस और टीआरएस का। टीआरएस ने तेलंगाना के लिए आंदोलन चलाई, कांग्रेस सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये फैसला ली अगर आंध्र प्रदेश को हम दो भाग कर देंगे। उस समय क्या हुआ था आपको याद होगा, राजशेखर रेड्डी की जो पार्टी के उनके बेटे, राजशेखर रेड्डी बड़े नेता थे कांग्रेस के, कंबाइंड कांग्रेस आंध्र प्रदेश बड़े नेता थे, उनके बेटे जगन रेड्डी ने एक विद्रोह के रूप में उनको अपने को सीएम बनाने के एक आंदोलन किए थे, जिससे उनके मतभेद हुआ और राहुल जी और उनमें पड़ा नहीं, उसके बाद उनको पार्टी से निकाला गया। उसके बाद उनको लगा कि सोनिया जी सोचे अगर हम इसको दो भाग कर देंगे तेलंगाना बनेगा तो, क्योंकि तेलंगाना में आंदोलन ये चला रहे हैं तो इसका बेनिफिट क्रेडिट हमें जाएगा, अगर हम हारेंगे तो कोस्टल हारेंगे लेकिन कम से कम ये जो इलाके हैं तेलंगाना इलाके उसमें कांग्रेस जीतेगी। लेकिन क्रेडिट ले गए टीआरएस और कांग्रेस को क्रेडिट नहीं मिला। इस बार कांग्रेस की ये थी कि हम बताएंगे हमने इसके लिए काफी काम किया, तेलंगाना हमारी है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के खिलाफ थे और उसके बाद आंध्रा चले गए, टीडीपी का वहां पे कोई ज्यादा बड़ा बेस नहीं था, केवल इतना ही था कुछ आंध्रा के लोग सेटल हुए हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद में। कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक गलत स्ट्रेटेजी हुई कि उनसे हाथ मिला। जब आप तेलंगाना को क्रेडिट लेके ये बताने जा रहे हैं वोटर्स को कि टीआरएस ने आपका मैंडेट फुलफिल नहीं किया, टीआरएस ने तेलंगाना के लिए अच्छी काम नहीं किया और हमने तेलंगाना क्रिएट किया और हम तेलंगाना के लिए वचनबद्ध हम ही कर पाएंगे तो हमारे लिए मौका दीजिए, यही था कांग्रेस का प्लान। लेकिन इनसे हाथ मिला के ये जो महाकुटुंबी की बात हुई जिसकी वजह से बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ, आज कांग्रेस के अंदर भी वही आवाज आ रही है शायद अगर हम टीडीपी के साथ ना जाते, अपना सीधा सीधा मुकाबला रखते, हो सकता है कांग्रेस की सफलता ज्यादा हो।
तो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बने इसको लेकर तेलंगाना कुर्बान कर दिया।
और दूसरी चीज हमें याद रखना होगा, ये पहले चुनाव है जहां टीआरएस और मजलिस मजलिस और टीआरएस का ओपन अलायंस था, कोई छुपे छुपी नहीं था। दूसरी तरफ बीजेपी टीआरएस और एमआईएम का जो अलायंस रहा उस अलायंस में ऐसा तय हो गया था कि एमआईएम इनके लिए बहुत काम करेगी उस सारे इलाके में जो माना जाता है निजाम के जो क्षेत्र है जहां निजाम राज करते थे उस क्षेत्र में एमआईएम का असर है। एमआईएम का काम यही था कि भाई अपने जो हैदराबाद सिकंदराबाद में मतलब 5-6-7 जो सीट है उसको रिटेन कर ले और इनके वो मदद करे। वो मुझे लगता है कि माइनॉरिटी वोट सारा टीआरएस के जाने में मजलिस का भी काफी रोल रहा है।
नहीं, मजलिस की अगर बात करें सुब्रतो साहब, ओवैसी साहब जिस तरह से पूरे देश में घूम रहे हैं, महाराष्ट्र जाके चुनाव लड़ लिया, बिहार लड़ लिया, उत्तर प्रदेश लड़ लिया, एक गठबंधन तेलंगाना में किया, जीत गए, अच्छे मार्जिन से जिता दिया उन्होंने, क्या ओवैसी साहब का कदम बड़ा होगा राष्ट्रीय स्तर पर कि अब वो कई राज्यों में जाके लोकसभा की भी तैयारी करेंगे क्या?
देखिए पक्का करेंगे, उनकी कोशिश यही होगा। जो एक मुस्लिम वॉयस, एक मुस्लिम लीडरशिप, वो तो देखो आपको मानना पड़ेगा उसमें काफी कमियां आ गई थी, उसको वो एक नया दिशा देना चाहते हैं। ये तो सवाल है ही नहीं कि हैदराबाद में उनके जैसे पॉपुलर लीडर तो और कोई नहीं है। आंध्रा का जो सिचुएशन आ गया, आप देखेंगे तो जो परिस्थिति है, जो लोकसभा चुनाव तक जब आएगी, मुझे लगता है ये दोनों आंध्रा एंड तेलंगाना एनडीए के साथ नहीं जा सकता। तो इनके जाने के एक ही जगह है, कैसे पहुंचे। वेरी सिंपली यही चीज ही होगी, आउटसाइड सपोर्ट कोई करेगा नहीं करेगा, पर आंध्रा में मुझे लगता है राहुल की चिंता ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए दूसरे तरफ जाना करीबन असंभव है। इसलिए दोनों जो फॉर्मेशन है उनको करीबन हम ये मान के चले, तय करके चले, जो इंडिपेंडेंट रोल प्ले करना होगा, और उसी पूरा जो माहौल आंध्रा और तेलंगाना में है उसमें कांग्रेस इसमें हार गया होगा, पर उसमें नेशनल लेवल में कोई असर इनके लिए बुरा नहीं होगा।
तीन राज्य अय्यर साहब कांग्रेस जीता, लेकिन एक राज्य हारना भी पड़ा मिजोरम में, वहां की क्षेत्रीय पार्टी को बहुमत मिला। वोटों का जो डिफरेंस है वो भी तकरीबन 6.5% के आसपास है। वो एक असर है कि पूर्वोत्तर में जिस तरह से बीजेपी कदम बढ़ा रही थी, क्षेत्रीय दलों के साथ सहयोग कर कदम बढ़ा रही थी, कम से कम वो राज्य कांग्रेस के लिए छीनना नहीं चाहिए, क्योंकि एक सिंबॉलिक महत्व तो होता उसका अगर वो जीतते।
लेकिन कई गलतियां तो वहां कांग्रेस पहले से कर रखी थी। एक तो कोई अल्टरनेटिव लीडरशिप लालतन होला के नेतृत्व में पिछले 10 साल से वहां चल रहा है। लालतन होला अपने ये में बड़े सीनियर नेता हैं, जिनका रोल ये था कि जब 1986-87 में MNF ये आपके मिजो नेशनल फ्रंट लालडेगा के साथ जो अकॉर्ड हुआ था राजीव गांधी के साथ, उस अकॉर्ड के समय वो मुख्यमंत्री थे। अपने मुख्यमंत्री पद को सेक्रीफाइस करते हुए दोबारा चुनाव हुआ जिसमें लालडेगा चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद भी बार बार लालथन आंवला कई बार बन चुके थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर कोई नया लीडरशिप नहीं था और एक इम्प्रेशन गया कि लालथन आंवला और उनके परिवार वही वहां पे कब्जा करके बैठे। इसीलिए इस चुनाव में हमने देखा कई एलिगेशन आना शुरू हुआ। नंबर टू, एक लैंड यूज पॉलिसी को लेकर किसानों के अंदर भी बड़ा ये चल रहा था कि इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है और ज्यादातर एलिगेशन और इरेगुलरिटीज हो रहे हैं। तीसरा चीज, जो लालतन हाल से नाराज हुए कई कांग्रेस लीडर्स जाके MNF में शामिल हुए। मुझे लगता है कि एक प्रकार से मिजोरम नेग्लेक्ट हो गया था, सारा चीज लालतन हवला पे छोड़ा गया। जहां आपने अल्टरनेटिव नहीं किया हो, जहां पे आपने सेकंड लाइन नहीं किया होगा, वहां पे यही होता है कि जब बड़े नेता के ऊपर ये हो जाता है फिर आप फॉलबैक करने के लिए सेकंड लाइन नहीं है।
प्रोफेसर साहब, अब जो कहा जा रहा है, पहले कहा जाता था कि एक तरफ मोदी है दूसरी तरफ कौन है, लेकिन कल जो चुनाव हुए उसके बाद राहुल गांधी, तो क्या जो तमाम विरोधी दल हैं सपा बसपा TRS TDP ममता बनर्जी, क्या अब राहुल को एक नेता के रूप में स्वीकार करेंगे वो?
देखिए, सबसे बड़ी बात है ये जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये अंग्रेजी प्रेस का एक क्रिएशन है। लोग पार्टी को वोट देते हैं, लीडर को भी वोट देते हैं, पर बहुत सारे इश्यूज होता है। हमारा जो संसदीय लोकतंत्र है उसमें पार्लियामेंट का जो नेता वो प्रधानमंत्री होते हैं, पर प्रधानमंत्री के साथ एक कैबिनेट भी होता है। तो मुझे लगता है हर पार्टी को ये सोचना चाहिए कि हमें चुनाव जीतना है तो हमें कलेक्टिव लीडरशिप को आगे बढ़ाना है, लोगों का सारे जो समस्याएं हैं उसके बारे में एक ठोस विचार करें, और ये भी हम देखें कि हम कुछ भी मैनिफेस्टो छपाए लोगों को बताएं, वो लोगों को इतना तक विश्वास होना चाहिए ये पार्टी जो बोल रहा है वो करके दिखाएगा।
बिल्कुल, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप चर्चा का विषय है कार्यक्रम के अंतर्गत 5 राज्यों के चुनाव परिणाम और इसके राजनीतिक मायने पर चर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी और शेखर अय्यर। परिचर्चा का संचालन पत्रकार संतोष पाठक कर रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है eirnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsoneir.nic.in।